ओम शांति। सबको अच्छा लग रहा है? हाँ, एक के बाद एक अलग अलग टॉपिक पर आपके क्लास चल रहे हैं, थक तो नहीं गए? हाँ, ये मौका है ईश्वरीय ज्ञान से बुद्धि को भरपूर करने का। आपने देखा होगा कि गाय, भैंस, बैल भी जब उनको घास मिलता है तो वो खा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, बाद में शांति से बैठकर उगारते रहते हैं। तो अभी आपको सुबह से रात तक एक के बाद एक विषय पर ज्ञान का प्रकाश दिया जा रहा है, वो सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं और पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, फिर उसको आप घर जाकर के आराम से साइलेंस में बैठकर उसको रिवाइज करेंगे, गहराई से उस पर चिंतन करेंगे कि ये जो भी बातें बताई गई वो क्या है, सही है क्या है और कैसे ये जीवन में उपयोगी है। स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद शायद अभी इतना पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं? स्वयं को जानना, पिता परमात्मा को पहचानना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही इस दुनिया को, सृष्टि खेल को समझना भी जरूरी है कि जिस दुनिया में हम आए हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये दुनिया क्या है, कैसे चलती है। पहले से ऐसी हैं या अभी ये ऐसी हैं, इसका आदि मध्यंत क्या है। एक एक्टर कोई भी फिल्म में रोल लेता है तो पूरी स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ता है, देखता है, जानता है, फिर वो अपने पार्ट को न्याय देता है। हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि पूरा 5000 वर्ष का ये ड्रामा क्या है। अनेकानेक मतें इसके बारे में भी होती हैं। कोई सोचते हैं भगवान ने ऐसी क्यों बनाई दुनिया, कोई सोचते हैं, मानते हैं अनादि काल से ही सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, हार जीत चलता ही रहा है, तो ऐसा है या कोई समय इनका था श्रेष्ठ, तो इसके बारे में अभी का ये सब्जेक्ट है। इनको जानने से हमारा अपना जीवन का खेल, हमारा अपना रोल कैसे हमें प्ले करना चाहिए वो हम लक्ष्य बना सकते हैं। तो सृष्टि का खेल प्रकृति और पुरुष का बना हुआ खेल है। प्रकृति और पुरुष का खेल माना ऐसा नहीं कोई स्त्री और पुरुष का खेल है। अब आप जानते हैं कि स्त्री शरीर है, पुरुष शरीर है। स्त्री शरीर पुरुष शरीर दोनों प्रकृति से ही बने हुए हैं, इसलिए यहां प्रकृति माना क्या, पुरुष माना क्या। प्रकृति माना पांच तत्व जो अनादि अविनाशी है, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि, इन पंच महाभूतों से दुनिया बनी है, भौतिक जगत बना है। यह संसार में जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, साधन है, वैभव है, पदार्थ है, शरीर है, इन आंखों से जो कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ पांच तत्वों से बना है। मैटर से बना है इसलिए मटेरियल कहते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है। ये पांचों ही तत्व अनादि और अविनाशी हैं, न उसकी उत्पत्ति है न अंत है, ये अनादि अविनाशी है। विज्ञान भी कहता है कि भौतिक शक्ति न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, वो केवल रूपांतरित होती है। और पुरुष माना चैतन्य शक्ति आत्मा, आत्मा भी अनादि अविनाशी है। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा की जो अनादि अविनाशी स्थिति है उसके बारे में काफी कुछ बताया है। न जायते न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के खत्म हो जाने पर भी आत्मा खत्म नहीं होती है, एक अविनाशी चैतन्य शक्ति है जिसे न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पवन सुखा सकती है, न पानी भिगो सकता है। प्रकृति से अलग चैतन्य शक्ति है जो प्रकृति और प्रकृति से बने पदार्थों का उपयोग करती। तो आत्मा भी अनादि अविनाशी है, प्रकृति भी अनादि अविनाशी है, दोनों का बना हुआ यह खेल अंडरस्टूड है अनादि अविनाशी। अब प्रकृति का रोल क्या है, प्रकृति कैसे स्थापना पालना विनाश का कार्य करती है, ये तीन कार्य अविरत गति से चलते रहते हैं, स्थापना पालना और विनाश। प्रकृति कैसे स्थापना पालना विनाश का कार्य करती है, प्रकृति स्वयं अपनी चेतना शक्ति से स्थापना पालना विनाश का कार्य करती है। प्राकृतिक चेतना और चैतन्य शक्ति आत्मा, ये दोनों अलग है। जैसे पेड़ बढ़ता है ना, तो प्राकृतिक चेतना, पर चैतन्य शक्ति आत्मा अलग है। तो प्रकृति में भी आप देखिए, बीज जमीन में गिरते हैं, स्थापना का कार्य हुआ। हम जनरल साइंस में सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते रहे हैं कि कैसे हवा के द्वारा, पंछियों के द्वारा पके फल जमीन में गिरते हैं, तो ये बीज कैसे फैलते हैं और जमीन में पड़ते रहते हैं। वही बीज प्रकृति तत्वों का संयोग पाकर, वही हवा पानी धूप के सहयोग से वो बीज अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, ये पालना का कार्य होता है। और वही प्रकृति के तत्व जब तमो प्रधान बनते हैं तो विनाश का कार्य करते हैं, अर्थक्वेक होते हैं, फ्लड्स आते हैं, फैमन होते हैं, साइक्लोन्स चलते हैं और विनाश का कार्य होता है। अब प्रकृति के द्वारा जो ये स्थापना पालना विनाश का कार्य होता है वो प्रकृति स्वयं अपनी शक्ति से करती है। विज्ञान के विकास के पहले काफी अंधश्रद्धा समाज में थी, अभी भी आप उसका दर्शन करते हैं कहीं कहीं, जो लोग मानते रहे कि सूर्य भगवान है, चंद्र देवता है, भगवान ही सूर्य चमकाते हैं, बिजली चमकाते हैं, भगवान ही बरसात बरसाते, इतने तक लोग मानते रहे कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। पर आप विवेक से सोचिए कि प्रकृति अगर परमात्मा की प्रेरणा या इच्छा से ही कार्य करती तो प्रकृति सदा सुखदायी होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा सुखदाता है, कल्याणकारी। पर हम देखते हैं कि आज प्रकृति उपद्रवी बन गई है, दुखदायी बन गई है, तो वो ईश्वर की प्रेरणा से कार्य नहीं करती, वो अपनी शक्ति से कार्य करती है। इसलिए ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल कैलेमिटीज है, ये गॉडली कैलेमिटीज नहीं। कई बार लोग कहते हैं ना भगवान कोपाईमान हुए, परमात्मा कोई कोपाईमान नहीं होते। ईश्वर नाराज हो गए, भगवान कोपाईमान हुए, इसलिए ये आपदाएं आई। ईश्वर कोपाईमान नहीं होते हैं, वो प्यार का सागर है, सुखदाता है, रहम दिल है, दया का सागर है, वो तो है ही दयालु कृपालु, वो कोई गुस्से में नहीं आता। इसलिए परमात्मा का इसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं है। अब पुरुष, हम चैतन्य शक्ति आत्माएं कैसे स्थापना पालना विनाश का कार्य करती, तो हम प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, आइडियाज क्रिएट करते हैं, ये स्थापना का कार्य। अभी इस हॉल में आप बैठे हैं, इसको बने हुए 23 साल हुए, 23 साल के कुछ महीनों पूर्व ये हॉल कहां था, कहां था? एक कागज पर नक्शे के रूप में था, मैप। और उसके कुछ दिनों पूर्व ये हॉल कहां था, कहां था? आइडिया के रूप में, कोई व्यक्ति के मन में था कि ऐसा ऐसा हॉल बनाना। इसलिए पूरा विश्व व्यक्ति के मन की रचना, पहले मन में विचार आता है, फिर हम उससे कर्म में लाते हैं, प्लान प्रैक्टिकल करते हैं, पालना हुई। और वही मनुष्य आत्मा जब पति तमो प्रधान बनता है तो वो विनाश का भी कार्य करता है, आपस में लड़ाई झगड़ा, मारामारी, खून, युद्ध, ये विनाश का कार्य। अब मनुष्य आत्मा जो ये कर्म करती है वो स्वयं के संस्कारों अनुसार करती है। ऐसा नहीं है कि हम जो कर्म करते हैं भगवान की प्रेरणा से करते हैं, हरेक अपने संस्कारों की प्रबलता अनुसार कर्म करते हैं। जब अच्छे संस्कार प्रबल है तो कितना भी गंदा वातावरण हो तो भी व्यक्ति खराब काम नहीं करता है। और हमारे में बुरे संस्कार प्रबल हैं तो अच्छे परिवार में जन्म लेते हुए संस्कारी माता पिता की पालना लेते हुए भी व्यक्ति खराब काम करते हैं। तो मनुष्य आत्मा स्वयं करता है और स्वयं भोगता है। कई बार लोग क्या कहते हैं, समझो हमें कई बार हम गुस्से में, आवेश में, ईर्ष्या में, वैर में, द्वेष में आ जाते हैं और कुछ गलत करने के लिए सोच बैठते हैं। फिर हमें अंदर से होता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए लोग कहते हैं कि अंदर बैठा हुआ भगवान पाप ना करने के लिए कहता है। पर आपने देखा होगा, आपका अपना भी अनुभव होगा कि कई बार उस अंतः प्रेरणा को दबा कर भी हम पाप कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। तो बताइए कि अगर वो अंतः प्रेरणा ईश्वर की होती तो वो इतनी कमजोर क्यों है जो हम उसको दबाकर गलत कर लेते। और ऐसी कमजोर प्रेरणा का तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको कैसे ईश्वरीय प्रेरणा कहें। और ऐसा भी नहीं है ना कि हम बुरा ही सोचते हैं और अच्छे विचार आते हैं वो ईश्वर की प्रेरणा है, ऐसा तो नहीं है। अगर हम मनुष्य आत्माएं बुरा ही सोचते हैं तो बुरा ही करते तो दुख ही पाते ना। पर हम अपने जीवन में सुख भी पाते हैं, दुख भी पाते हैं, मीन्स हम अच्छा भी करते हैं बुरा भी करते हैं, मीन्स हम अच्छा भी सोचते हैं बुरा भी सोचते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर की प्रेरणा है, पर हमारे अपने ओरिजिनल जो शुद्ध पवित्र संस्कार है, हमारी जो ओरिजिनल नेचर है, जो फर्स्ट लेसन में आपने समझा है कि हरेक आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध आत्मा है, सत्य आत्मा है, तो हमारी अपनी जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो हमारी असली जो शुद्धता है वो हमें कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर हमारे लेटेस्ट संस्कार खराब है और मजबूत है खराब रीति से, तो उस प्रेरणा को दबा कर भी हम गलत काम कर लेते हैं। तो मनुष्य आत्मा खुद अपने संस्कारों की प्रबलता अनुसार कर्म करता है। पर हमें जब कुछ करना नहीं है तो हम ईश्वर का नाम दे देते हैं। हमें अनुभव है कि हम भाई बहने जब भाई बहनों को कहते हैं कि आप रोज योग करिए, क्लास में आइए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए, तो लोग क्या जवाब देते। खुद का निर्णय नहीं होता है तो ईश्वर का नाम ले लेते हैं कि बहन जी भगवान की इच्छा होगी हम जरूर आएंगे। होती खुद की इच्छा नहीं है, खुद अभी जीवन को पवित्र श्रेष्ठ बनाने तैयार नहीं है तो नाम ईश्वर का दे देते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो हम जरूर आबू आएंगे। बाकी सब प्रोग्राम प्लानिंग खुद करते हैं कि इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर आध्यात्मिक पुरुषार्थ की जब बात आती है, हमारी विल इतनी पावरफुल नहीं होती है तो हम ईश्वर के नाम पर थोप देते हैं कि भगवान की इच्छा होगी तो जरूर हम आएंगे। तो सत्यता तो ये है कि हम मनुष्य आत्माएं स्वयं अपने संस्कारों के वश कर्म करते हैं और हम मनुष्य आत्माओं की सृष्टि खेल में कितनी जिम्मेवारी है, क्योंकि हम इस वर्ल्ड ड्रामा के हीरो एक्टर्स कहते हैं ना, हम समस्त प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिशाली मनुष्य आत्मा है। तो वास्तव में हमारे विचार, वाणी, कर्म, व्यवहार का प्रभाव प्रकृति जगत पर पड़ता है, क्योंकि बाकी सब तो हमें फॉलो करते हैं। बाकी जो पशु पंछी प्रकृति जगत है वो तो हमें क्रमशः फॉलो करते हैं, उनमें इतना विवेक नहीं है जितना हम मनुष्य आत्माओं का विवेक विकसित है। इसलिए हमारे कर्म, व्यवहार, विचार, वाणी, वाइब्रेशंस का प्रभाव प्रकृति जगत पर पड़ता है। हमारे आधार पर उनका उत्थान और पतन होता है। इसलिए देखिए, मैं कई उदाहरण आपको दे सकती हूं। हम कहते हैं कि जब राम राज्य था, मनुष्य देवताएं थे, तो शेर और गाय, बाघ और बकरी भी एक घाट पानी पीते थे। रामचरितमानस में ये बताया हुआ है। माना जब हम पवित्र निर्विकारी होते हैं तो पशु पंछी प्रकृति जगत भी अपनी सतो प्रधान स्टेज में होते हैं, वे भी सात्विक होते हैं। हम ये भी ऋषि मुनियों का गायन पढ़ते रहे हैं कि ऋषि मुनि घने जंगलों के बीच आश्रम बनाकर, गुरुकुल बनाकर रहते थे और उनकी तपस्या का प्रभाव आसपास इतना जंगल में पड़ता था कि गाय, बाघ, शेर, चीते जैसे हिंसक प्राणी और प्राणियों के साथ आश्रम में आकर पालतू प्राणी की तरह बैठ जाते हैं। जब हमारी वृत्तियां शुद्ध हैं तो पशुओं की हिंसक वृत्ति का भी शमन हो जाता है। ये है हमारे पॉजिटिव पावरफुल स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस का प्रभाव। एक और उदाहरण, एक कहानी हम स्कूल में पढ़ते थे, काव्य के रूप में आती थी, जिसमें ये कहानी है कि एक राजा जो बहुत प्रजावत्सल था और प्रजा के सुखकारी के कार्य करता था, वो वेश बदल कर नगर चर्चा करता था कि मेरी प्रजा सुखी है या नहीं। वो राजा वेश बदल कर मुसाफिर बनकर घोड़े पर एक किसान माता के खेत में आता है और वहां बहुत सुंदर गन्ने की फसल हुई होती है। वो किसान माता भी अतिथि देखकर गन्ना काटकर पूरा ग्लास भर के गन्ने का रस निकालकर उनको देती है और वो पीता है। बहुत खुश होता है कि मेरे राज्य में इतनी अच्छी फसल होती है। खेत से निकलते उससे मन में विचार आता है कि इतनी अच्छी पैदावार है तो इसका कोई राज्य कोष में भी फायदा होना चाहिए, राजा की तिजोरी में भी कुछ लाभ होना चाहिए, कुछ टैक्स डालना चाहिए। तो वो टैक्स डालता है। नेक्स्ट ईयर फिर वो आता है, फिर माता गन्ना काटती है, रस निकालती है, पर कम रस निकलता है और इतना स्वादिष्ट नहीं होता है। तो वो राजा कहता है कि ऐसा क्यों हुआ? तो वो कहती है कि दयाहीन हुआ राजा, रसहीन हुई धरा। जब से हमारा राजा दयाहीन हुआ और उसने टैक्स डाला, तब से ये धरा भी रसहीन हो गई। हमारी वृत्ति प्रवृत्ति का प्रभाव प्रकृति जगत पर पड़ता है और ये साइंटिफिकली प्रूव है। हमारे देश के वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने ही ये खोजा था कि अगर हम अपने बाग बगीचों में, खेतों में सुमधुर सात्विक गीत संगीत बजाते हैं तो उनका बहुत सुंदर विकास होता है। और ब्रह्मा कुमारी का तो प्रैक्टिकल अनुभव है। हमारी जो ग्राम विकास विंग है, उन्होंने ये नई शाश्वत योगिक खेती पद्धति निकाली। हमारे भाई बहने खेतों में जाते हैं और योग करते हैं, वाइब्रेशंस फैलाते हैं। बीज बोने से लेकर जमीन हल चलाते हैं तब से लेकर फसल काटते हैं तब तक के हर प्रोसेस को योग से करते हैं, तपस्या के वाइब्रेशन से करते हैं। इसके इतने अच्छे परिणाम मिले हैं जिसको पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उत्तराखंड और दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात दोनों के साइंटिस्टों ने सारे स्टेटिस्टिक लिए, डाटाज लिए और उन्होंने ये रिजल्ट अनाउंस किया कि योग का भी प्रभाव पड़ता है। इससे जो भी फल सब्जियां अनाज उगते हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ दोनों के रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, क्योंकि योग के पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस प्रकृति जल्दी स्वीकार करती। मनुष्य के मन तो पॉल्यूटेड है तो हम इतना कैच नहीं कर पाते, पर प्रकृति बहुत जल्दी इसको कैच करती है, इसका प्रभाव उस पर पड़ता है। एक और यूरी गैलर नाम आपने सुना होगा जो मनोशक्ति के प्रयोग करता है। वो चाबियां सिर्फ थॉट पावर से, दृष्टि से चाबियां बेंड करता है, चम्मच बेंड करता है, चलती घड़ियां रोक देता है। एक बार लंदन के अल्बर्ट हॉल में यूरी गैलर और दादी जानकी जी का प्रोग्राम हुआ था। उस समय भी उसने हाथ में बीज उगाकर दिखाए थे थॉट पावर्स। और राजयोग है ही मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए, बुद्धि को दिव्य और शीतल बनाने के लिए। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारे बुजुर्ग बड़े सदा हमें ये सिखाते रहे हैं कि हमारे विचारों का अन्न पर भी प्रभाव पड़ता है और उस अन्न को खाने वाले के मन पर भी वो प्रभाव जाता है। इसलिए हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। जिस प्रकार के विचारों में रहकर हम भोजन बनाते हैं उसका अन्न पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान परमात्मा की याद में बनाया हुआ प्रसाद, मां ने प्यार से बनाया हुआ भोजन और होटल में बिजनेस पर्पस से बना भोजन, तीनों में कितना अंतर? मेंटालिटी, थॉट पावर। इसलिए हमारे विचार व्यवहार वाइब्रेशंस का प्रभाव पशु पंछी प्रकृति जगत पर पड़ता है। तो जब हम पवित्र हैं तो प्रकृति जगत भी पवित्र सात्विक होता है। जब हम पतित भ्रष्ट बनते हैं, हम अपने जीवन के नियम संयम को गंवाते हैं, तो प्रकृति भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहती है, वो भी उपद्रवी बनती है। इसलिए आज जब हमारे मन पॉल्यूटेड है, हमारे मन में जब स्वार्थ है, लोभ है, स्वकेंद्री हम हैं, और हमने जब पर्यावरण को प्रदूषित किया है, इम्बैलेंस क्रिएट किया है, तो आज हम देख रहे हैं ना कि प्रकृति भी उपद्रवी बन गई, क्योंकि हमने अपने नियम संयम तोड़े, तो फिर वो भी लॉ एंड ऑर्डर में नहीं रहते। तो सृष्टि का खेल प्रकृति और पुरुष का बना है। प्रकृति का अपना रोल है, पुरुष का अपना रोल है। हम आत्माओं के रोल के आधार पर प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। प्रकृति और पुरुष का बना ये खेल अनादि अविनाशी। चित्र में बताया है कि प्रकृति जगत में बहुत छोटे छोटे ये साइकल्स है जो अनादि अविनाशी रूप से चलते ही आ रहे, डे एंड नाइट का साइकल है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, अविरत गति से ये चल ही रहा। कितनी भी घोर अंधेरी अमावस की रात हो, सवेरा होता ही है। ये डे एंड नाइट का साइकल है जो चलता ही आ रहा है। मौसम का साइकल है, गर्मी बरसात सर्दी, अपने आप सीजन चेंज होते हैं, ये उनका साइकल है। लाइफ एंड डेथ का साइकल है, जन्म जीवन मृत्यु, जन्म जीवन मृत्यु। तो जैसे ये छोटे छोटे चक्र अनादि अविनाशी रूप से चलते आ रहे हैं, द होल वर्ल्ड साइकल भी हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है। यह अनादि अविनाशी रूप से चलता ही रहता है। इसलिए कब ये खेल शुरू हुआ, कब ये पूरा होगा, उसका एक ही आंसर है, यह अनादि अविनाशी। सृष्टि नाटक, नाटक मीन्स नाटक जो अटकता नहीं है, साइक्लिकल ऑर्डर में चलता ही रहता है। और इसलिए बचपन में आपको भी याद होगा, बच्चे एक दोस्त से पूछते थे, अंडा पहले या मुर्गी पहले, बीज पहले या फल पहले, उसका कोई जवाब नहीं। उसका जवाब यही है कि ये साइक्लिकल वे से चलता है। हर साइकिल का अपना टाइम ड्यूरेशन है। डे एंड नाइट का साइकिल 24 घंटे का है, सप्ताह का साइकिल 7 दिन का है, वर्ष का साइकिल 12 मास का है। द होल वर्ल्ड साइकिल का भी टाइम ड्यूरेशन फिक्स है, ये 5000 वर्ष का है। प्रति 5000 वर्ष ये रिपीट होता है, हर साइकिल रिपीट होता है। सेम द होल वर्ल्ड साइकिल भी 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इसलिए हम कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप पुनरावृत्त होता है। नथिंग इज न्यू कहते हैं, कुछ भी नया नहीं है, क्योंकि गुरु नानक जी ने भी ग्रंथ साहब में कहा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही। चिंता ताकी कीजिए अनहोनी होए, अनहोनी हो तो चिंता करिए, जो हुआ था वो ही हो रहा है। क्योंकि क्या हुआ था ये हम नहीं जानते हैं, इसलिए हमें नया लगता है कि ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि हम नहीं जानते, हम त्रिकालदर्शी नहीं है, हम मनुष्य आत्मा स्मृति विस्मृति में आते हैं, इसलिए हमें लगता है कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ। पर जो हुआ था वही हो रहा है, इसलिए बताया बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन लेना है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ये बात कही है कि हे अर्जुन, तुम हम और ये राजाएं पहले भी थे अभी भी हैं, और सृष्टि चक्र का ऐसा कोई काल नहीं जब हम तुम और ये ना हो, क्योंकि ये इटर्नल है, अनादि अविनाशी। ज्योतिष विज्ञान भी तभी संभव है जब इस सत्य को हम समझते हैं कि ये 5000 वर्ष का वर्ल्ड ड्रामा है, पूर्व निश्चित है, और प्रति 5000 वर्ष ये रिपीट होता है। आज ज्योतिष के पास हम जाते हैं, वो हमारी रेखाओं को देखकर बताता है कि आपके नसीब में ये लिखा है, ये लिखा है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आप बताइए, जरूर ये घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, तब तो वो बता रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर ये घटनाएं पूर्व निश्चित ना हो तो ज्योतिष विज्ञान भी नहीं हो सकता। परमात्मा बेहद का ज्योतिष है, इसलिए वो होल वर्ल्ड ड्रामा के लिए ये सत्य हमें बताते हैं कि ये वर्ल्ड ड्रामा पूर्व निश्चित है और हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। और लाइफ साइकिल में भी आप देखिए, हर चीज में हम पहले प्लानिंग करते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं। हर व्यवस्था में आप देखिए, आज इतना बड़ा रेलवे तंत्र है, इतनी ट्रेन दौड़ रही है, इनका टाइम टेबल फिक्स करते हैं तब तो वो दौड़ती है ना। पर इस वर्ल्ड ड्रामा में हम मनुष्य आत्माओं का क्या रोल है हर क्षण, वो हम नहीं जानते हैं। इसलिए गीता में कहा है कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पर नहीं, क्योंकि कर्म फल सिर्फ वर्तमान कर्म के आधार पर नहीं आता है, पर आपके पूर्व कर्मों का माइनस प्लस जो हिसाब लिंगर ऑन होता है, बैक फॉरवर्ड होता है, वो मिलाकर रिजल्ट आता है। वे आपने बैंक में 50,000 जमा किए हैं, पर आपका पहले से ही 2,00,000 का उधार चल रहा है, तो फिर भी जमा का खाता तो बोलेगा ही नहीं ना, क्योंकि आपका पहले से डेबिट बोल रहा है। इस प्रकार कई बार हम कितने भी अच्छे व्यवहार करते हैं, पर कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है तो हम कहते हैं ना कि मैंने इनके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया तो भी उसने देखो मेरे साथ क्या किया, हमने अच्छा किया हमें क्या मिला, हम ऐसे कहते हैं। पर हमारा उनके साथ कोई जमा है ही नहीं, पहले से उधार चल रहा है, तो हमें अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि ये वर्ल्ड ड्रामा एक्यूरेट है, जो मिला जब मिला जहां मिला एक्यूरेट हिसाब से मिलता है। और इसलिए कहते हैं कि जो हुआ वो कल्याणकारी, जो हो रहा है वो कल्याणकारी, जो होगा वो भी कल्याणकारी, क्योंकि वर्ल्ड ड्रामा कर्म सिद्धांत पर चलता है और कर्म सिद्धांत एक्यूरेट है, उसमें कोई इंटरफियरेंस नहीं कर सकता। तो इस प्रकार हम इस वर्ल्ड ड्रामा को, 5000 वर्ष के सृष्टि नाटक को स्वस्तिक के रूप में देखते आ रहे हैं। भक्ति में हम ये स्वस्तिक का चिन्ह निकालते हैं ना? जानते हैं ना इस चिन्ह को। हर शुभ कार्य में हम स्वस्तिक निकालते हैं, हर उद्घाटन में, है ना, हम देखते हैं व्यापारी लोग अपने अकाउंट के रजिस्टर में भी स्वस्तिक निकालते हैं और दो शब्द लिखते हैं, कौन से? शुभ और लाभ। परंतु हम जानते नहीं है कि ये स्वस्तिक हम क्यों निकालते, ये किस चीज का प्रतीक है। वास्तव में ये स्वस्तिक सृष्टि चक्र का प्रतीक है। 5000 वर्ष का ये वर्ल्ड ड्रामा 4 स्टेजेस से चलता है। इसको 4 युगों में विभाजित बताया है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। चारों ही युगों की आयु समान है, 1250 वर्ष। टोटल साइकिल 5000 वर्ष का है। हर साइकिल आप देखिए 4 स्टेजेस से चलता है। लाइफ एंड डेथ का साइकिल देखिए, बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। डे एंड नाइट का साइकिल देखिए, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इवन मौसम का साइकिल देखिए, बसंत, बहार आती है, गर्मी, सर्दी, पतझड़ और फिर वापस बसंत आती है। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी स्थाई नहीं, ओनली चेंज इज परमानेंट, हर क्षण परिवर्तन होता है। आत्मा जब प्रकृति के संसर्ग में आती है, समय और प्रकृति के प्रभाव में आकर परिवर्तन को प्राप्त होती है। हर चीज नई से धीरे धीरे पुरानी होती है, खत्म होती है और फिर वापस नई बनती है। हम मनुष्य आत्माएं जब शरीर धारण करते हैं तो मनुष्य आत्माएं भी सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो स्टेजेस में आते हैं, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इसलिए आप देखिए स्वस्तिक का सतयुग में हाथ राइट साइड दिखाए, जो शुभ की निशानी है। जब पुरुष, मनुष्य आत्माएं और प्रकृति दोनों सत्य स्थिति में होती है, उस टाइम पीरियड को सतयुग कहा जाता है, जहां शुभ ही शुभ है, सब कुछ राइटियस है, यहां कोई गलत कर्म नहीं, दुख नहीं, पाप कर्म नहीं, ये पूर्ण सुख की दुनिया, वो स्टेज को सतयुग कहते हैं, जिसको हम स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं। हम ही जब देवता थे, संसार स्वर्ग था। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, नर्क कोई पाताल में नहीं, देवताएं कोई काल्पनिक चमत्कारी नहीं है और असुर कोई अलग योनि के भयानक प्राणी नहीं, ये हमारी स्टेजिस है। हम मनुष्यत्माएं जब पूर्ण पवित्र और सर्व गुणों से संपन्न होते हैं तो हम ही देवता कहे जाते हैं और हमारी वो दुनिया स्वर्ग कही जाती है। हर धर्म इसे स्वीकार करता है, मुस्लिम जन्नत बहिष्ट कहते, क्रिश्चियंस पैराडाइज हेविन कहते, सिख भाई बहने सचखंड सुखधाम कहते। भारत ही स्वर्ग था, हम ही देवताएं थे। उस टाइम पीरियड में पूर्ण सुख शांति पवित्रता थी। पर परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए त्रेता युग में आप देखिए स्वस्तिक का हाथ राइट साइड से नीचे डाउन जा रहा है। माना त्रेता युग में भी हम राइटियस है, प्योर है, वहां भी सुख शांति पवित्रता है, वहां कोई रोग शोक दुख अशांति नहीं है। पर हमारी राइटियसनेस, हमारी आत्मा की जो न्यूनेस है, वो परसेंटेज डाउन होती। कोई चीज बिल्कुल नई और 5 दिन भी यूज करो, फर्क तो पड़ेगा ना। चीज बिगड़ी नहीं है, खराब नहीं हुई है, फटी नहीं है, न्यूनेस कम हुई है। तो सतयुग स्वर्ग है तो त्रेता युग सेमी स्वर्ग है। कुछ परसेंटेज में हम डाउन होते हैं। तो दो युग 2500 वर्ष समग्र विश्व में पवित्रता सुख शांति होती, वहां कोई अपवित्रता लड़ाई झगड़े दुख शांति नहीं। और द्वापर युग से बताया है लेफ्ट साइड, स्वस्तिक का हाथ लेफ्ट साइड बताया, अशुभ की शुरुआत। जब हम फिर से अपने आत्म स्वरूप को भूल बॉडी कॉन्शियस बनते हैं, विकारों के मार्ग पर जाते हैं, इसलिए द्वापर युग में कहा जाता है देवताएं द्वापर युग में वाम मार्ग पर जाते हैं, उल्टे मार्ग विकारों के मार्ग पर जाते हैं। पहले योग बल से उत्पत्ति होती थी, संतान उत्पत्ति होती थी, संकल्प शक्ति से होती थी, फिर मंत्र शक्ति से, फिर वरदान शक्ति से, शब्द शक्ति। जब आत्माओं में पवित्रता नहीं रही तो विषय भोग वासना से उत्पत्ति होती है, वो द्वापर युग से शुरू होता है। और कलयुग में आप देखिए लेफ्ट साइड से हाथ ऊपर जा रहा है, मीन्स कलयुग में विकारों की, बुराइयों की, तमो प्रधानता की अति होती है, वृद्धि होती है। और वो हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन पापाचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार कितना बढ़ता ही जा रहा है। और आप भी शायद महसूस करते ही होंगे, आज से 10-15 वर्ष पहले आपने कभी इतने गंदे बलात्कार के केसेस सुने? कितनी दुनिया गिर चुकी है, भ्रष्ट बन गई, कितनी गंदी दृष्टि वृत्ति बन गई। इसलिए सतयुग गोल्डन एज, त्रेता सिल्वर, द्वापर कॉपर, कलयुग आयरन एज। अब जो समय चल रहा है वर्ल्ड साइकिल में, दो कांटे के रूप में बताया है, कलयुग अंत और सतयुग आदि का संधिकाल संगम युग जिसको कहते हैं, क्योंकि संसार का नियम है जिस चीज की अति होती है उसका अंत जरूर होता है। और आप देख रहे हैं कि आज नैतिक चारित्रिक आध्यात्मिक दृष्टि से हम अति गिर चुके हैं। ये वो संधिकाल का समय है, क्योंकि साइक्लिकल ऑर्डर के अनुसार कलयुग के बाद फिर किसके आने का समय है? सतयुग। अंधारी अमावस की रात के बाद फिर से चढ़ती कला होती है ना पूर्णिमा की ओर। ये साइक्लिकल ऑर्डर है। तो कलियुगी पतित आत्माओं को कौन सतयुग के लायक बनाएगा? तब कलियुग अंत के इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं। अब तक मनुष्य आत्माओं ने, महात्माओं ने, धर्मात्माओं ने, अध्यात्म पुरुषों ने प्रयास किया इस दुनिया को सुधारने का। हरेक ने थोड़े थोड़े समय, थोड़े थोड़े समाज का सुधार किया, पर पूर्ण सुधार तो परमात्मा ही कर सकते हैं। आज एक मकान को किराएदार या संभालने वाले रिपेयर कर सकते हैं, पर टोटल डेमोलिश करके नया बनाना वो तो मालिक ही कर सकता है। तो सब आए, सबने थोड़े थोड़े समय के लिए संसार को सुधारने का प्रयास किया। इस्लाम आया, क्रिश्चियन आए, बौद्धिस्ट आए, हरेक ने थोड़े थोड़े समय के लिए थोड़े थोड़े समाज को सुधारा, पर आज कलयुग में सभी भ्रष्टता पर है। इसलिए लास्ट ऑलमाइटी आते हैं, परमात्मा आते हैं। इसलिए वर्ल्ड साइकिल में अभी जो समय चल रहा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ड्रामा का डायरेक्टर स्वयं परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, हमें पतित से पावन बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये समय है श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने की, है ना? सीजन होती है ना, सीजन में बोया हुआ बीज अनेक गुना फल देता है, पर अगर बीज क्वालिटी नहीं तो अनेक गुना हल्का फल मिलेगा। और अगर सीजन में अटेंशन रखकर क्वालिटी बीज बोया, क्वालिटी पालना की, तो अनेक गुना क्वालिटी फल मिलेगा। सेम ये समय चल रहा है। ये समय है जब विश्व बदल रहा है और परमात्मा आकर हमें ज्ञान देते हैं कि अपने कर्म रूपी बीज को सुधारो, क्वालिटी बनाओ, अपने थॉट्स को क्वालिटी बनाओ, अपने जीवन को क्वालिटी बनाओ। हर चीज खरीदते हैं तो हम पहले क्या कहते हैं, क्या देखते हैं? क्वालिटी है ना, अच्छी क्वालिटी का है ना। और जीवन की क्वालिटी के बारे में हम सोचते ही नहीं। चीजें क्वालिटी चाहिए और जीवन की क्वालिटी हमने डाउन कर दी। अब ये समय है, परमात्मा हमें कहते हैं कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, सृष्टि रंगमंच है, सूर्य चांद सितारे इसकी रोशनी है, आप आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर्स है। शरीर हमारी ड्रेस है, हम शरीर नहीं है। शरीर हमारी ड्रेस है, कोई ने स्त्री शरीर की ड्रेस पहनी, कोई ने पुरुष शरीर की ड्रेस है। पर हमने पहली भूल ही ये की कि हम खुद के आत्म स्वरूप को भूल गए, जो ड्रेस पहनी हम उसके अभिमान में आ गए कि मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, युवा हूँ, बूढ़ा हूँ, हम बॉडी कॉन्शियस बन गए। कोई राजा का ड्रेस फिल्म में पहनता है तो वो अपने आप को राजा थोड़ी समझने लगता है कि मैं राजा हूँ। लोग कहेंगे ना, घर में आकर वो कहे कि मैं राजा हूँ तो सब कहेंगे ना, भाई तुम फिल्म में राजा थे, सचमुच थोड़ी राजा। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हमने जो ड्रेस पहनी हमने अपने आप को वही मान लिया कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। और इस बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण ही आप देखिए कितने विकार उत्पन्न हुए, वासना की दृष्टि हुई और आज पूरा समाज विभाजित हुआ है कि ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये गुजराती है, ये मराठी है। कितने डिफरेंसेस आज पैदा हुए। रूट कॉज बॉडी कॉन्शियस। हम वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं। आप देखो सुबह से रात तक, अभी आप माँ बाप के आगे बेटे के समान है, पत्नी के आगे पति के समान है, बच्चों के आगे पिता है, ऑफिस में आप एम्प्लॉई है, फ्रेंड्स के आगे आप मित्र है, आप कौन है इसमें से? ये रोल्स है आपके, पर हमने अपने रोल को ही रियल समझ लिया कि मैं इनका पति हूं, मैं इनकी सास। अब एक एक्टर फिल्म में, जैसे अमिताभ बच्चन मान लो कुली फिल्म में कुली बना, तो आप कहेंगे कि अमिताभ बच्चन कुली है, हा? कहेंगे ऐसे? नहीं, उसने कुली का रोल प्ले किया, इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया, पागल का रोल प्ले किया। हम ये रोल्स प्ले कर रहे हैं, पर हमने समझ लिया कि हम ही वो हैं, इसलिए वो ईगो डेवलप हुआ, क्लैशिस हुआ, वही दुख और अशांति का कारण है। तीसरी भूल कि हर एक्टर का कार्य है अपने रोल पर ध्यान देना और अपना रोल अच्छी रीति प्ले करना। जो को एक्टर्स है, दूसरे एक्टर्स है, वो ठीक पार्ट प्ले करते हैं, नहीं करते हैं, गलत करते हैं, वो देखना किसका काम है? डायरेक्टर का, एक्टर का नहीं है। हमने क्या भूल की? खुद के एक्शन पर ध्यान देने के बजाय हम दूसरों का देखते हैं कि इनके घर में ऐसा चल रहा है, इनकी बहू ऐसी है, इनका बेटा ऐसा है, वो ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम दूसरों पर ध्यान दे रहे हैं और इसलिए रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? खुद का कर्म बिगड़ गया। तीन डांसर डांस कर रही है, इसमें से एक डांसर खुद के ताल पर ध्यान देने के बजाय दूसरी का देखती है किसका रोल मिल, ताल मिलता है कि नहीं, इसका ताल मिलता है कि नहीं, तो रिजल्ट क्या होगा? उनका अपना डांस बिगड़ जाएगा। समझ गए ना, जीवन क्यों बिगड़ गया, क्यों बिगड़ गया, दुनिया क्यों बिगड़ गई, जीवन क्यों बिगड़ गया? क्योंकि खुद के कर्मों पर ध्यान देने के बजाय हम दूसरों पर ध्यान देते हैं। आप अपने चिंतन को चेक करिए, अक्सर कौन सी बातें हम सोचते रहते, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, संसार चिंतन, नकारात्मक चिंतन, शरीर चिंतन, स्वचिंतन कहां हम कर रहे, खुद पर तो ध्यान ही नहीं, इसलिए जीवन बिगड़ गया और हमारे जीवन बिगड़े, कुल नाटक बिगड़ गया। और चौथी भूल, एक दृश्य में चार एक्टर है, चारों का अलग अलग अपना अपना रोल होता है ना, भी एक एक्टर को रोना है उसी समय दूसरे एक्टर को कहा गया है, रोल है कि उनको हंसना है, तीसरे को चुप रहना है, चौथे को सलाह देनी, तो हरेक अपना रोल प्ले करेंगे। पर एक को रोता हुआ देख दूसरा भी रोने लगे, तीसरा भी रोने लगे, चौथा भी रोने लगे, तो ड्रामा चलेगा। हमने ये भूल की, उसने गुस्सा किया ना इसलिए मैंने गुस्सा किया, वो दो बोले तब मैं चार बोला। सब भ्रष्टाचार करते हैं, हम भी करेंगे, खुद का रोल भूल गए, दूसरों को फॉलो कर रहे। आप आत्मा हैं, भगवान के बच्चे हैं, आप इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर बने हैं, आपको अपना रोल कैसे प्ले करना चाहिए, वो सोचने के बजाय ये ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। इसलिए कलयुग अंत में जब पूरा ड्रामा बिगड़ जाता है, अशुभ, दुख, अशांति, तब परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, वे आकर फिर से डायरेक्शन देते, हम सबका सही परिचय कराते हैं, हमारे विवेक को जगाते हैं, हमें रियलाइज कराते हैं आप कौन हैं, क्या है, अपने एक्शन को ठीक करो, ये ज्ञान देते, ये समय है हम फिर से अपने आप को महान, पवित्र, श्रेष्ठ बना सकते। और लास्ट बात कि अब ड्रामा का ये साइकिल पूरा हो रहा है, जैसे फिल्म के शो होते हैं ना, 1, 2, 3, 40 शो हुए, 50 शो हुए, 1000 शो हुए, सेम फिल्म रिपीट होती है, इसलिए वर्ल्ड ड्रामा का ये साइकिल अब पूरा हो रहा है, हम कलयुग अंत पर पहुंच गए। और शो पूरा होता है तो एक्टर्स भी क्या करते हैं, नाटक पूरा होता है फिर एक्टर्स क्या करेंगे, वापस घर जाएंगे, अपना ड्रामा का ड्रेस उतार देंगे और अपनी नॉर्मल ड्रेस में वापस घर जाते हैं। रोल पूरा हो जाए फिर एक्टर खड़ा रहेगा क्या, भाई तुम्हारा पार्ट पूरा हो गया, जाओ। इस वर्ल्ड ड्रामा का अब ये साइकिल पूरा हो रहा है, इस शरीर रूपी ड्रेस को उतार कर हम आत्मा एक्टर्स को भी अपने ओरिजिनल, अपने ओरिजिनल स्वरूप में, शुद्ध पवित्र स्वरूप में वापस घर जाना है। वहां हम अपने ओरिजिनल आत्म स्वरूप में रहते हैं, जो हमारा सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप है, हम अपने ओरिजिनल शुद्ध स्वरूप में वहां रहते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अभी जीते जी ये प्रैक्टिस करो, ये पुरुषार्थ करो, तो इजीली शरीर छोड़ वापस घर जा सकेंगे। बाकी जाना तो है ही, या तो आप ज्ञान और योग से पवित्र बनकर विथ रिस्पेक्ट परमात्मा के साथ वापस चलें। और अगर ज्ञान योग से हम पावन नहीं बनेंगे, पावन तो बनना ही है, कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके भी पावन तो बनना ही है, क्योंकि पावन आत्मा ही वापस जा सकते। आपको एक देश से दूसरे देश में जाना है तो भी तो उसके भी तो कोई नियम है ना, उस देश के रूल्स रेगुलेशंस आपको मानने पड़ेंगे। आलोक से परलोक जाना है तो उनके भी तो नियम है। हम इस वर्ल्ड ड्रामा में पार्ट प्ले करते करते अभी कलयुगी पतित बन गए हैं और अब वापस जाना है पावन बनकर। इसलिए परमात्मा आकर हमें मदद करते, गाइड करते हैं। हम हिम्मत करते हैं वो मदद करते। इसलिए कलयुग महाविनाश के बाद सभी आत्माओं को नंबरवार वापस घर जाना है। और जो जिस युग के योग्य बनकर जाएंगे फिर वापस उस युग में अपना पार्ट प्ले करने आएंगे। अभी अगर हम 100% प्योर बनेंगे तो हम सतयुग से लेकर मेजर रोल प्ले करेंगे, इस वर्ल्ड ड्रामा के हीरो एक्टर बन सकेंगे। हर एक्टर का लक्ष्य क्या होता है, हर एक्टर की चाहना क्या होती, हीरो बनने का, हीरो बनने का। जिनको अच्छी एक्शन करना नहीं आता है वो एक्टर सोचेगा ना कि भाई इससे तो निकल जाऊं तो अच्छा है। तो इस संसार के खेल से भी कौन निकलना चाहते हैं? कई कहते हैं इससे तो छूट जाए तो अच्छा है, मुक्ति में जाके बैठ जाए। इस वर्ल्ड ड्रामा से कौन छूटना चाहता है जिनको अपना पार्ट अच्छी रीति प्ले करना नहीं आता है? तो वो कहते हैं कि हम इस दुनिया से छूट जाएं तो अच्छा। पर एक्टर मींस पार्ट प्ले करना। सदा के लिए कोई भी इस वर्ल्ड ड्रामा से छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड ड्रामा में आना, पार्ट प्ले करना, वो कोई दुख शांति का कारण नहीं। लोग समझते हैं कि जन्म मरण दुख शांति का कारण, इसलिए जन्म मरण से ही छूट जाओ। जन्म मरण दुख शांति का कारण नहीं है, विषय विकार दुख शांति का कारण। इसलिए विकारों से छूटना है, न कि इस वर्ल्ड ड्रामा से छूटना। कोई कुछ भी ना करे तो उसको आप महान कहेंगे? हम भी कहते हैं ना, कुछ तो करो काम, जीवन में कुछ तो कमाओ। तो ड्रामा से निकलकर बैठ जाना वो कोई महानता नहीं है। पर इस दुनिया में रहते हुए पवित्र, महान, योगी, दिव्य बनना वो महानता है। परमात्मा वो सिखाते हैं। इसलिए इस महापरिवर्तन की वेला के समय परमात्मा का हम आत्माओं को यह आदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो, अपने वर्तमान कर्म को श्रेष्ठ बनो। जो ये एक जन्म पवित्र योगी श्रेष्ठ बनेगा वो अनेक जन्म सतयुग त्रेता में महान दिव्य रहेगा, सुख और शांति प्राप्त करेगा। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है, परमात्मा का आदेश है। अब जो भाई बहने इस सत्य को नहीं जानते हैं फिर वो कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां घरबार छुड़ाती है। ब्रह्मा कुमारियां घरबार नहीं छुड़ाती, विषय विकार छुड़ाती। अब आप बताइए, विषय विकार तो छोड़ने ही चाहिए ना, जो दुख और अशांति के कारण है। वो तो आप खुद भी भक्ति में रोज गाते थे आरती में, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, गाते थे कि नहीं गाते थे? तो झूठा झूठा गाते थे या सच्चा? वो तो आप भी भक्ति में गाते थे, पर हमने भगवान को कहा कि आप विषय विकार मिटाओ, आप पाप हरो और मैं करता रहूंगा। इससे पाप मिटेंगे? मैं करता रहूंगा, भगवान आप मिटाते रहो, ऐसे चलेगा? जो करेगा वो पाएगा ना, हम करेंगे तो हम पाएंगे ना। इसलिए परमात्मा कहते हैं करना तो तुझको ही है, हाँ मैं तुमको सही ज्ञान दूंगा, तुम हिम्मत करेंगे मैं हजार गुना मदद करूंगा, पर करना तो किसको है? हमें है ना। इसलिए ये ब्रह्मा कुमारियों के कहने की बात नहीं है कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बना देती, ये भगवान का आदेश है पवित्र और योग्यता, क्योंकि कलयुग को सतयुग में बदलना है तो हमारे पवित्र जीवन का सहयोग चाहिए। अब गृहस्थ जीवन क्या विषय भोग के लिए ही है, योग के लिए नहीं है? पति पत्नी के संबंध सिर्फ वासना के लिए है या एक दो के मददगार बनने के लिए भी? तो यहां वो सिखाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण भी पति पत्नी, राम सीता भी पति पत्नी, वो क्यों पूजे जाते हैं? आज के पति पत्नी क्यों नहीं पूजे जाते? क्योंकि उनका गृहस्थ आश्रम था, उनके संबंध पवित्र दिव्य थे। आज का गृहस्थ आश्रम है? है? आश्रम जैसी पवित्रता और शांति घर में है? कहां है? इसलिए आज का गृहस्थ अधर्म बन गया, गृहस्थ धर्म नहीं रहा है, अधर्म बन गया। कहने के लिए कहते हैं धर्म पति धर्म पत्नी, पर धर्म कहां रहा है? पति पत्नी के विकारी संबंध रहे हैं। तो ये परमात्मा का आदेश है भाइयों और बहनों, और जो आत्माएं समझती हैं वो धारण करती, हमारे कहने से कोई थोड़ी कर देता है ना। हमारे कहने से करते तो कब से लाखों हो जाते ना। आध्यात्मिकता कोई यूनिफॉर्म नहीं है जो सबको पहना दिया जाए। आध्यात्मिकता स्वयं की समझ, रुचि और दृढ़ता से धारण होती है, कोई हमारे कहने से नहीं हो जाती। बेशक हम निमित्त है परमात्मा का संदेश देने के लिए, क्योंकि हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, इसलिए हमें निमित्त बनने का मौका है, और ये शुभ संदेश हम सबको बताते हैं। इसलिए बहुत अच्छा किया कि आप सब यहाँ आए हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, ज्ञान को सुन रहे हैं। आप जाकर के कोई ऐसी कोई भी बात करें तो आप सही ओपिनियन दे सकेंगे ना? हाँ दे सकेंगे। हाँ अब आप सही मार्गदर्शन देंगे कि परमात्मा का ये आदेश है कि इस महापरिवर्तन की वेला पर भगवान के आदेश को मानकर जो नर नारी अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे वो आने वाले सतयुग के लायक देवता बनेंगे। तो बनना है ना सबको, किस किस को बनना है? बहुत अच्छा, अब ताली बजाओ खुद के लिए। कईयों ने हाथ नहीं उठाया। नहीं, हाँ वो भाई क्या पूछ रहे? हाँ बोलिए। गृहस्थ आश्रम और देखो, गृहस्थ आश्रम का मैंने बताया कि पवित्र जीवन होता था और संकल्प की शक्ति से, योग बल से बच्चे पैदा होते थे। फिर वो शक्ति, मंत्र शक्ति आई, फिर शब्द शक्ति आई कि वो गुरु कहते थे ऋषि और उनको संतति होती थी। वो शक्ति आत्माओं में थी जो प्रकृति को भी कंट्रोल करते थे। आज आत्मा में वो पवित्रता और सत्यता की शक्ति नहीं रही, तो द्वापर युग से विषय भोग से संतति उत्पत्ति की प्रथा शुरू हुई और आज ये भी नहीं रहा। संतति होने के बाद भी आप बताइए कितने गृहस्थी होंगे जो पवित्र रहते हैं। अगर विषय भोग सिर्फ संतति उत्पत्ति के लिए, तो बच्चे होने के बाद तो सभी के जीवन पवित्र योगी बन जाते ना, पर कहाँ है आज ये अंतर है। हाँ बहन जी बोली, आपको क्या पता आपका क्या पार्ट है? पता है आपको, कल का भी नहीं पता है, दो घंटे के बाद का भी नहीं पता है। तो हर एक्टर का, हर इंसान का कर्तव्य क्या होना चाहिए कि मुझे अपना हर कर्म अच्छे से अच्छे करने का पुरुषार्थ करना है। फिर जो रिजल्ट आता है उस पर आप कहेंगे कि मैंने अच्छा प्रयास किया, पर फिर भी जो रिजल्ट आया वो भाग्य, वो ड्रामा, वो निश्चित है। आज एक व्यापारी बिजनेस करता है, वो पूरी अपनी मेहनत करता है, फिर भी रिजल्ट में जो कमाई होती है तो कहते हैं ना कि हमने पूरी मेहनत की पर जो नसीब में था वो मिला, कहते हैं कि नहीं? हर बात में ये है। आज एक किसान खेती करता है, दिल से पूरी मेहनत करता है, पर जो नसीब में है वो मिला, कहते हैं? तो इसी प्रकार हर चीज निश्चित है, पर क्या निश्चित है हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए गीता में कहा ना, तुम्हारा कर्म पर अधिकार है कि तुम कर्म जितना श्रेष्ठ करना चाहो तुम पुरुषार्थ करो। कर्म फल पर अधिकार नहीं, वो कर्म फल को ही भाग्य कहते हैं, नसीब कहते हैं, पूर्व निश्चित कहते हैं। तो सरेंडर माना, हाँ, तो ईगो नहीं करना है ना। सरेंडर मीन्स ईगो छोड़ना है, बुद्धि को समर्पण करना है। कर्म जब करो तो मालिक बनकर करो कि मैं रेस्पॉन्सिबल हूं ना, तो मैं पूरी अवेयरनेस से कर्म करूं, पर जब उसका फल मिले तो बुद्धि को समर्पण करूं कि जो रिजल्ट मिला है वो मुझे स्वीकार कर। तो आज के लेसन का, इस लेसन का सार यही है कि अब नाटक का ये साइकिल पूरा हो रहा है। स्वयं डायरेक्टर शिव बाबा आए हैं, हम एक्टर्स का सही परिचय दे रहे हैं, फिर से हमारे एक्शन को करेक्ट कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान दे रहे हैं। ये समय है कि ये पाप कर्मों को भस्म करने का, और सत्कर्मों को जमा करने का ये समय है, इसलिए अब शेष जीवन को, समय को, अपनी एनर्जी को, अपने मन वचन कर्म तन मन धन को अब हमें सफल करना है, श्रेष्ठ बनाना है। तो 3 मिनट शिव बाबा की याद में बैठेंगे, बहुत सुंदर गीत बजेगा, हरे खुद के साथ और बाबा के साथ प्रॉमिस करेंगे कि बाकी हमारा जो भी जीवन हो हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे, सफल करेंगे। ओम शांति।
पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ।